Hare Krishna. This lecture is given by Gopal Krishna Maharaj, dated 6 February 2013, place Surat, book distribution award ceremony. Play karna hai.
Aur chalo jaate hain.
जैसे आप जानते हो आज आप उन भक्तों को आभार की सभी कुछ किया जाएगा जिन्होंने ग्रंथ के मैराथन के महीने में प्रयास किया था. तो वो प्रोग्राम कितने देर में शुरू करेंगे? हाँ, दूसरे स्कंद के अध्याय का पांचवा श्लोक संस्कृत इस प्रकार से है, बोर्ड में लिखा हुआ है श्लोक.
तस्मात्
सर्वात्मा
भगवान
ईश्वरो
हरि
श्रोतव्य केतव्य मातव्य
मर्तव्य
चुचातवाय तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्या केतव्यश्च मातव्यश्च जातवाय तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरि
भगवान ईश्वरो हरि
भगवान ईश्वरो हरि
जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले तात्पर्य इस प्रकार है। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाएंगे अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को बांध देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर वनस्पतियां सरीसृप पक्षी पशु असभ्य मानव तथा पुनः मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है और यही सकाम कर्म में चक्र से छूटने का सु अवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोगता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवद गीता में भी संस्तुत की गई है जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए।
ओम ज्ञान गुरुवर्य ज्ञानंजनाचार्य तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य वंदेहं श्री गुरु जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है तो सबसे पहले ये जो श्लोक है वो केवल इनके लिए है जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक है। तो आप ऐसे कितने भक्त समझ कैसे उसे मुक्त होना चाहते हो सब भौतिक समाज में जब आप लोगों से चर्चा करो कि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश कष्ट कष्ट अक्सर क्या सुनने में मिलता है कहाँ है कष्ट यानी सुखी सुख कोई बुद्धिमान हर बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि बौद्धिक समाज में क्या है कष्ट कष्ट इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे ये भौतिक संसार क्या है बड़ा जेल खाना है चाहे आप अरबपति हो या गरीब हो सात प्रकार कष्टों से कोई मुक्त हो सकता है इतिहास में कितने प्रसिद्ध कलाकार आए हुए कितने प्रसिद्ध नेता आए हुए और बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है हर जगह कष्ट कष्ट यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सबसे पहले समझ कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है तो ये श्लोक उनके लिए है जो कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं जो व्यवहार जो व्यक्ति भक्ति योगी मार्ग में जुड़ते हैं जुड़ते हैं एक तरह से भाव है भगवत प्रेम अनुकूल हो दूसरी तरह से वो भौतिक संसार के कष्टों से भी मुक्त होना चाहते हैं जैसे कि भगवान ऋषभदेव पांच स्कंद में कहते हैं दूनम प्रमता फिर से विक्रम जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है विकर्मिक कार्य और कर्म का अर्थ है वो कार्य जो शास्त्र के आधार पर हो जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो मंदिर बना रहे हो किताबों में छाप रहे हो एक रूप से ये जो कार्य है किसी भौतिकवादी के कार्य जैसे दिखता है हम भी अखबार कागज खरीद रहे हैं किताबों को छापने जा रहे हैं फिर ईंट खरीदते हैं सीमेंट खरीदते हैं मंदिर बनाने के लिए तो एक रूप से ये दिखता है बिल्कुल एक साधारण भौतिक व्यापारिक कार्य है और क्योंकि ये परम भगवान की खुशी के लिए किया जा रहा है इसे कहते हैं अकर्म तो अकर्म कार्य वो होता है जो भगवान की खुशी के लिए निभाया जाता है और वो है शास्त्र पर आधारित विकर्मी कार्य उसे कहते हैं विकर्मी कार्य कैसे कहते हैं शास्त्र के विपरीत कार्य तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं जो व्यक्ति विकर्मी कार्य कर रहे हैं वो मूर्ख है आप क्यों हमें मूर्ख ही बुला रहे हैं कहते हैं आज जो ध्येय आपके पास वो आपको कष्ट कष्ट दे रहा है और बहुत से कार्य करने का परिणाम ये होगा कि फिर से एक ध्येय प्राप्त होगा जो क्या आपको कष्ट कष्ट देगा तो शास्त्र में स्पष्ट स्थापित किया जाता है कि भौतिक संसार में कष्ट कष्ट है तो जो कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए क्या उपाय दिया जा रहा है इस श्लोक में तीन प्रकार की सेवाओं पर बल दिया जा रहा है कहा जा रहा है कि अगर आप कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो हमें भगवान का श्रवणम महिमा गायम सदा स्मरण करना चाहिए आप लगभग हर प्रवचन में सुनते हो इन तीन सेवाओं पर बल है कि नहीं जब प्रहलाद महाराज संत के पिता ने पूछा ये बताओ कि आज पाठशाला में क्या सीखे और क्या कहा बेटे बेटे ने नवजात भक्ति का ज्ञान दिया जो आरंभ होता है किसके साथ शरणम के साथ और कीर्तन के साथ तो कष्टों से मुक्त होने का उपाय क्या है परम भगवान का गुणगान करना उनके गुणगान को सुनना और स्मरण करना आगे कहा जा रहा है जो परमात्मा नियामक तथा समाज कष्टों से रक्षा करने वाले हैं तो इस श्लोक के अनुसार परम भगवान अपने भक्तों की क्या करते हैं सुरक्षा भी कर देगा। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को ये सूचना दो। क्या क्या सूचना, क्या सूचना, कौन थे प्रतिदानी जी? मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं भोगना पड़ता। एक रूप से आप देखो तो भगवान के इतने भक्तों को कष्ट भोगना पड़ता। पांडव भाइयों को भीष्म देव ही समझ नहीं पाए कि पांडव भाइयों को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा। और प्रहलाद महाराज उनको कष्ट कम कष्ट भोगना पड़ा, आप कल्पना भी नहीं लगा सकते। उन्हें उनके पिता ने हर प्रकार से प्रयास किया था कि प्रहलाद की भक्ति टूट जाए और भक्ति की वजह और उनका आकर्षण बढ़े उनके प्रति। झेल सांपों ने उन्हें खेल लिया था, हाथी कल आपने देखा प्रोग्राम में कृष्ण बालराम के साथ हाथी लड़े थे, कृष्ण बालराम लड़े थे हाथी के साथ, पर गए हाथी भी चले उन पर, पहाड़ों से उन्हें फेंका गया, पर किसने उनकी सुरक्षा की? भगवान ने, राखे कृष्ण माने के माने कृष्ण राखे के। हरिदास ठाकुर एक समय हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में घसीट कर लेकर गए। हरिदास ठाकुर 500 साल पूर्व भारत में मुसलमानों का राज्य आरंभ हो गया था और एक काजी था नवद्वीप में, काजी है राजा का प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे आजकल होता है। तो ये क्या काजी जो था बड़ा फैनेटिक था, उसने बार बार प्रयास किया हरिदास हरिदास किसी प्रकार से हरि नाम का उच्चारण बंद कर दिया। हरिदास ने कहा कि भगवान के एक ही नाम है, भगवान के अनेक नाम हैं, किसी का भी उच्चारण कर सकते हो। जब हरिदास नहीं माने हरि नाम बंद करने के लिए, तो हरिदास को 22 बाजारों से घसीट कर ले गए। कल आप भक्तों ने प्रोग्राम देखा था तो जितने ये विदेशी भक्त थे जो इन प्रोग्राम्स में, ये सब के सब रूसी थे 99%। और जब इस्कॉन का प्रचार रूस देश में शुरू हुआ था, उन दिनों में कम्युनिज्म की सरकार थी, नास्तिक सरकार। हमारे कई भक्त शुरू में 1972-73 में कई भक्तों को जेल में डाल दिया था, और जेल में जाकर डालकर कहाँ भेजा? साइबेरिया, जो कि विश्व का लगभग सबसे ठंडा स्थान है, और साइबेरिया ने इन भक्तों को जेल में डाला। और खाने के लिए क्या मिलती थी? सूखी डब रोटी, एक महीने पुरानी पुराना डब रोटी। और भक्तों को क्या कहा जा रहा था? हरि नाम लेना बंद करो, मांस खाना शुरू करो, हम छोड़ देंगे। एक दो भक्त जेल में मर गए, पर भक्तों ने हरि नाम बंद किया। पर और एक भक्त उसे जो डब रोटी मिलती थी खाने की, उसकी माला बना ली 108 मोती की, उसमें वो जाप कर रहा था। तो शुरू में भक्तों को बड़ी गहरी कठिनाई अनुभव करना पड़ा था रूस में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर भी हरिनाम कर रहे थे, काजी ने कहा घसीट कर ले जाओ उसे, और 22 हजारों में घसीट कर ले। अक्सर इस प्रकार की सजा दी जाती थी जो बड़े भारी क्रिमिनल थे, और अक्सर उनका अनुभव था कि दूसरे या तीसरे बाजार तक जब वो पीटते थे आदमी मर जाता था। और हरिदास को 22 बाजारों में ले गए पीटते हुए पीटते हुए पीटते हुए। काजी ने आदेश दिया था यहाँ का हरिनाम रखवाओ यहाँ को मर जाए मर जा। और 22 बाजारों में हरिदास को घसीटा जा रहा था। हरिदास क्या कर रहे थे? भगवान के नाम माना में ले गए। और उनकी विनम्रता देखिए क्या है। हरिदास ने 22 बाजारों तक जब वो नहीं मरे जो उनको पीट रहे थे वो आश्चर्य हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कभी इतिहास में देखा ही नहीं इतना पीटा हमने इतना पीटा अभी तक इस व्यक्ति कुछ चोट ही नहीं आ रही। चोट नहीं आ रही थी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये चोट को स्वीकार कर रहे थे। और फिर हरिदास ने सोचा कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे जो पीटने वाले हैं इनको काजी जेल में डाल देगा। तो हरिदास ने क्या व्यवहार किया? सांस लेना बंद कर दिया। ऐसे लगा कि जैसे उनकी मृत्यु हो गई। और जब काजी को सूचना मिली कि हरिदास की मृत्यु हो गई काजी ने कहा ये हरिदास ट्रेटर था इसे मुसलमान बढ़िया लाइट्स नहीं मिलेंगे गंगा में। तो उसे गंगा में फेंका। तो फिर हरिदास गंगा के दूसरी ओर तैर कर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने फिर से हरिनाम शुरू कर दिया। जब राजा को पता लगा कि हरिदास इसके विषय में सूचना आई थी कि वह मर गया है आज भजन करने फिर से पेड़ के नीचे तो बड़े प्रभावित हुए। फिर उन्होंने जाकर माफ़ी मांगी हरिदास से इन अपराधों के। तो हमने उदाहरण इसलिए दिया था ये बताने के लिए ये नहीं कि भगवान के भक्तों को कठिनाई नहीं अनुभव करनी पड़ती। भगवान एक तरह से तो कहते हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं ही होगा। फिर इसके भगवान ये नहीं कहते मेरे भक्त को कभी किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखो प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। विदेश आने से पहले प्रभुपाद जी अलग अलग स्थान में निवास कर रहे थे। और जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे तो दो दो मील पैदल जाते थे बस का किराया बचाने के लिए। और जब अमेरिका भी गए तो पहले एक साल के लिए कोई रहने का ठिकाना नहीं था। और एक समय प्रभुपाद जी एक व्यक्ति के घर में रह रहे थे। घर नहीं वो गोडाउन होता है जैसे लॉक बुलाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। लॉक में रह रहे थे न्यूयॉर्क में। वो व्यक्ति भंग लेता था शराब। एक दिन रात के 1 बजे प्रभुपाद जी को मारने आए नश में। तो प्रभुपाद जी 1 बजे टाई पैटर सूटकेस बंद करके न्यूयॉर्क की गली सड़कों में आना पड़ा। तो भगवान के भक्तों को कष्ट भी भुगतना पड़ता है। उसका ये अर्थ नहीं कि उनकी श्रद्धा भगवान में कम होती है। इस विषय में कुंती महारानी की प्रार्थना है हे भगवान मेरे कष्टों को आप बढ़ाओ उपाधि संतुष्ट प्राप्त करते हैं। क्योंकि जितना आप कष्टों को बढ़ाते हो उतनी ज़्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है भगवान भक्तों के रक्षक हैं और वो नियामक हैं और अन्य के हृदय में उपस्थित हैं किस रूप में परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में भगवान हर चीज़ के साक्षी बनते हैं। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति पूछते हैं कौन है साक्षी हमारे हर कार्यों का। जब आप भौतिकवादियों से कहो आत्मा सनातन है शरीर नश्वर है तो पूछते हैं कौन है हमारे हर कार्य के साक्षी। तो हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी एक नहीं अनेक सूर्य के देव चंद्रमा तारे वह इन सब के साथ, इन सब के अलावा और कौन है? परमात्मा। परमात्मा हर चीज के साक्षी बनते हैं और इच्छा के अनुसार हमें बुद्धि देते हैं। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, सर्वस्य चान हिंदी सारी विश्व महान शुद्ध ज्ञानम अपहानम चा। मेरे द्वारा ही स्मरण की शक्ति आती है, मेरे द्वारा ही अपहानम भूलने की शक्ति भी आती है। जो भगवान का स्मरण करना चाहे भगवान में उस प्रकार की सुविधा देते हैं, जो भगवान को भूलना चाहे वो सुविधा भी देते हैं। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ये स्थापित कर रहे हैं कि परम भगवान भक्तों के रक्षक हैं, वो नियामक हैं और साथ में हर एक हृदय में विराजमान हैं, कई रूप में परमात्मा के रूप में। और समस्त कष्टों से मुक्त होने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या उपाय दिया है, क्या उपाय दिया है इस श्लोक में? हाँ, श्रवणम और शरणम केतनम और विष्णु स्मरणम। शरणम केतनम जब उपयोग किया जाता है उसका अर्थ क्या है? सुनो भगवान के नामों को, भगवान की कथाओं को, इस भगवान की लीलाओं के विषय में, उसी शब्दों में कृष्ण कथा में रुचि लो। तो शास्त्रों का निर्णय है कि हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए और प्रजल्पा से हमें दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए। और कृष्ण कथा के साथ भगवान के नामों में हमारी रुचि रहनी चाहिए। पर क्या कारण है कि शास्त्र का निर्णय है कि कृष्ण कथा भगवान के नामों में रुचि बढ़ाए और हमारा क्या अभ्यास है इन कार्य में हमारी रुचि बहुत कम है? क्या कारण है? रूपक गोस्वामी जी इस विषय की चर्चा करते हैं उपदेशमृत के सातवें श्लोक में। रूपक गोस्वामी जी छह गोस्वामियों के लीडर थे, इसलिए हम भक्तों को रूपनुगा भी कहा जाता है, जो कि रूपक गोस्वामी जी की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी ने रूपक गोस्वामी को प्रयाग में इस समय कुंभ मेला हो रहा है। अब मैसे कितने भक्त कुंभ मेला में हो आए हो? कोई नहीं, बस दो। और कितनों का जाने का विचार है? कोई नहीं। इसका का बहुत अच्छा बड़ा कैंप है कुंभ मेला में, पाँच छः हजार साधु करोड़ प्रसाद के लाभ खिला रहे हैं। तो कुंभ मेला प्रयाग में है इस साल, और प्रयाग में ही चैतन्य महाप्रभु ने रूपक गोस्वामी को भक्ति संबंधित शिक्षा दी थी 10 दिनों के लिए। और फिर इस शिक्षा के आधार पर रूपक गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक है भक्ति रसम दसिंधु और दूसरा है श्री उपदेशन। और इन लोग भक्त ग्रंथों का अनुवाद प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में किया है, जिनका आगे अनुवाद गुजराती और अनेक भाषा में हो चुका है। तो रूपक गोस्वामी इस सातवें श्लोक में कहते हैं उपदेशों में के भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे क्या है मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो भी मीठे हैं। पर मीठापन तो सबको अच्छा लगता है, सब जगह के बाकी रिवाजों में तो बाकी स्थानों में मीठापन अक्सर अंत में खाते हैं, पर गुजरात में शायद मीठापन पहले खाते हैं, है कि नहीं? बाकी सदैव बाना है। तो मीठी चीज़ें सबको अच्छी लगती है, इसीलिए आज के वातावरण में इतने लोगों को डायबिटीज है। वो खास के भारत में अनेक लोगों को डायबिटीज है, क्योंकि सबको मीठा अच्छा लगता है। मीठा खाना था केवल कृष्ण प्रसाद था। तो रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान के नाम जो है मीठे हैं, और कहते हैं कि हमें मीठापन महसूस नहीं हो रहा। अगर हमें महसूस होता कि भगवान के नाम मीठे हैं तो हम दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं कि नहीं। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं एक तरफ से कहते हैं मीठे हैं, फिर आगे कहते हैं बस का मीठापन हमें महसूस नहीं हो रहा। क्या कारण है, क्यों ये मीठापन महसूस नहीं हो रहा? मीठापन महसूस नहीं हो रहा किसके कारण? अविद्या के कारण। माने जीव में अविद्या के छाले हैं। जैसे कि जीव में अगर छाले लग जाए, कई बार छाले आ जाते हैं, तो आपको कोई कितना भी अच्छा भोजन प्रसाद दे टेस्ट आएगा नहीं। अगर आपको ऊंचा बुखार हो और कितना भी अच्छा भोजन प्रसाद कोई दे टेस्ट आएगा आपको नहीं आएगा। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं अविद्या की बीमारी के कारण हम भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं कर सकते। हमारा अनुभव है कई बार हम लोगों को सालों साल विनती करते रहते हैं प्लीज चैन प्लीज चैन प्लीज चैन, और वह एक वहाँ से आगे बढ़ते ही नहीं। जब प्रभुपाद जी की इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई थी अमेरिका में, तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसमें एक कार्टून निकला था। कार्टून अंग्रेजी भाषा में था। एक व्यक्ति कह रहा था दूसरे व्यक्ति से चैन चैन चैन, और दूसरा व्यक्ति कह रहा था कैन कैन कैन। ये समझ लग रहा है आपको अंग्रेजी भाषा आनी थी। एक व्यक्ति कह रहा था जाप करो जाप करो जाप करो, दूसरा व्यक्ति कह रहा था नहीं नहीं नहीं। तो ये सबका अनुभव है कि आप कहीं से निवेदन करते हो चैन चैन चैन, एक दो तीन वर्ष से ज़्यादा आगे बढ़ते ही नहीं। उसका कारण क्या है? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं उसका कारण है अविद्या की बीमारी। अविद्या क्या है कि बीमारी का क्या अर्थ है? हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का प्रभाव है, जिन्हें हम अनर्था कहते हैं। अनर्था का अर्थ है जिसकी आवश्यकता नहीं, और ये अनर्थ के कारण जैसे आपको भौतिक बुखार हो तो कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए टेस्ट नहीं आया। अविद्या के कारण हमें हरिनाम का मीठापन महसूस नहीं हुआ। हरिदास का हरिदास का मीठापन इतना महसूस हुआ था कि लोग पीट रहे थे जब भी उन्होंने हरिनाम नहीं किया। तो इसका कोई उपाय है या नहीं है, मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए। जी में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमें हरिनाम का मीठापन महसूस नहीं हो रहा। तो इस समस्या का कोई उपाय है या नहीं? हाँ है, क्या है बताओ। रूप गोस्वामी उपाय देते हैं। हमारे शास्त्रों में समस्या की पहचान दी जाती है और उस समस्या को हल कैसे करना वो उपदेश भी दिया जाता है। भौतिक समाज में समस्या की पहचान दी जाती है और उपाय के विषय में ज्ञान भी रहता है। कई बीमारियां हैं, अब जाओ डॉक्टर कह रहा कैंसर है आपको, डॉक्टर से पूछो कैंसर का कोई उपाय है, सॉरी नो उपाय। पर हमारे शास्त्रों में समस्या की पहचान है और जो उपाय है उसके विषय में भी ज्ञान है। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं अगर आप ध्यान से हरिनाम का उच्चारण करोगे रोज, तो फिर अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। और क्या लाभ होगा? और मीठापन फिर से महसूस होने लगेगा। जैसे कि आपको जब बुखार होता है, खास करके ऊंचा बुखार, तो आपका भोजन खाने का किसी चीज़ के लिए दिल नहीं करता है ना। फिर तो जैसे बुखार घटते जाता है तो फिर टेस्ट भी बढ़ते जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी जैसे आप जाप बढ़ाते हो ध्यान से करते हो उतनी मात्रा में ही भौतिक आकर्षण भी घटते जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री शास्त्र के बिल्कुल प्रथम श्लोक में कहा है चेतो दर्पण मानो। हरि नाम के लाभ उच्चारण का एक लाभ क्या है, ये जो भौतिक आकर्षण है ये कम हो जाता है। जैसे कल आप लोगों ने देखा ही है पिछले चार पाँच दिन आगे कृष्ण शो देख रहे थे, ये सारे ड्रामा जो किए थे सारे के सारे भक्त थे और ये ऐसे भक्त थे जिनका जन्म हुआ था उस वातावरण में जहाँ किसी ने कृष्ण का नाम सुना भी नहीं था, सबका परिचय हुआ पिछले 15-20 सालों में हरे नाम के साथ। और आप देख रहे हो जो हरे नाम स्वीकार करते हैं थोड़े समय में ही उनका बिल्कुल जीवन बदल जाता है। ये हरे नाम की शक्ति। कृपा जी ने संसार की स्थापना की विचार आरम्भ किया किसके बल पर, यह हरे नाम के बल पर। तो रूपक गोस्वामी कहते हैं अगर हम ध्यान से करेंगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेत दर्पण मार्जना। तो अगर हम भौतिक आकर्षण से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय है, श्रवणम कीर्तनम। और श्रवणम कीर्तनम करोगे तो फिर विष्णु स्मरण भी संभव हो पाएगा। विष्णु स्मरण का अर्थ है भगवान का चिंतन करना, भगवान की लीला का चिंतन करना, भगवान के उपदेश का चिंतन करना। आप भगवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हो जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो अर्जुन उनके सनातन साथी अत्यंत दुखी थे, फिर अर्जुन ने भगवान की गीता के संदेश का स्मरण आरम्भ किया। और जैसे गीता में भगवान की गीता का संदेश आरम्भ स्मरण आरम्भ किया उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं उनके साथ उपस्थित है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उसी प्रकार जैसे अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण किया हम भक्तों को गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए। और ये विष्णु स्मरण संभव है अगर श्रवण कीर्तन भी करो तो श्रवण कीर्तन सब भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये स्थापित कर रहे हैं कि भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है। तो इसलिए जो व्यक्ति कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए उपाय दे रहे हैं। तो क्या है उपाय, क्या है उपाय, श्रवणम कीर्तनम और इस विषय में आगे कहते हैं भगवान भक्तों के रक्षक है, परमात्मा है और नियामक है। तो हम सबको हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए ध्यान के साथ, और क्योंकि भगवान के नामों में कोई अंतर है नहीं है। तो जितने ध्यान से करेंगे उतना गहरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। अभी शुरू कर दूँ? हाँ अच्छा ठीक मेरा आ गए बोला। तो मैंने ऐसे उन दोपहर को जाना था में। गीता में क्या कहा है, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? कई बार लोग पूछते हैं भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रचार करते कहीं पौली समाज में हम सब की आदत है कोई शॉर्टकट छोड़ते हैं तो ये है शॉर्टकट आप लोग प्रचार के कार्य में तो जैसे आप जानते हो सब भग स्वर्ग के साथ जुड़े हो कि पापा जी ने ग्रंथों की सेवा वेतन की सेवा पर बल दिया क्यों क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान है और इस आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से आध्यात्मिकता दूर होती है और ये जो ज्ञान है ये बड़ा महत्वपूर्ण है इन ग्रंथों का बड़ा ज्ञान प्रभाव है मैं आपको एक अफ्रीका की कथा सुनाता हूँ हमारे एक भक्त करगर द्वारका लीला देवी दास वो रोज गीता बातें जाती है नैरोबी की सड़क में पापा जी के ग्रंथों को एक अफ्रीकन आदमी तेजी से चल कर जा रहा था काला आदमी अफ्रीका किसी प्रकार से द्वारका लीला ने उसे रोक दिया उसको प्रभावित कर दिया कि गीता एक खरीद तो उसे गीता ली और वो जा रहा था पता था आत्महत्या कर पर उस व्यक्ति ने सोचा फिर ये किताब देखे तो पर कीनिया में जब वो किताब आते हैं तो उसमें अपना पता भी छोड़ देते हैं एक कार ये आदमी आत्महत्या करने जा रहा था बड़ी मुश्किल से दुआ कर लिए मुझे प्रचार करके किताब दी उसके मन में पता नहीं क्या भावना हुई उसने कहा आत्महत्या करने से पहले मैंने देखने की किताब में मेरे आंसू में से आ गई उसे पहला एक पेज पढ़ा दो पेज पढ़ा तीन पेज पढ़ा इतना प्रभावित हुआ आत्महत्या का भाव उसे छोड़ गया और फिर उसने मंदिर फोन किया मैं द्वारका लीला माता जी को मिलना चाहता हूँ फिर वो द्वारका लीला माता जी को मिलने आया मंदिर में और उसने अनेक आध्यात्मिक प्रश्न पूछे ये क्रिश्चियन था ये और फिर हरिनाम का बिल्कुल उच्चारण शुरू किया तो इस प्रकार हजारों उदाहरण हैं हमारे एक भक्त बॉम्बे में घर घर जाकर गीता पाठ रहे थे आप लोग सूरत के साथ घर घर जाकर प्रचार नहीं करते और हमारे कई स्थानों में लोग करते हैं जैसे दिल्ली मंदिर में एक एनएसएल में कम से उन्होंने कुल मिलाकर 4.5 लाख गीता बांटी और उसमें से 3 लाख से एक 1-to-1 बात आ गई पूछे तो एक बहुत बॉम्बे में घर घर जाकर गीता बांट रहे थे उन्होंने घर में घंटी मारी किसी ने दरवाजा नहीं खोला फिर दूसरी घंटी मारी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो सोचा था सर पर घर में उसने चलो एक बार और ट्राई कर लेते तो तीसरी घंटी मारी नहीं और अंदर खोला क्या है क्या है क्या चाहिए तो मैं गीता लाया हूँ गीता लाया मैं आत्महत्या की तैयारी कर रही थी तुम्हारी गीता फिर उसने उसको प्रचार किया आप सब विश्वरूप को जानते हो विश्वरूप प्रभु को जानते हो आज आए थे व्हील चेयर में अहमदाबाद से इनके भाई भी थे उनका ध्यान हो गया तो ये कैसे भक्त बने अहमदाबाद में अहमदाबाद आपके पड़ोस में ही है अहमदाबाद में हमारे भक्त घर घर जाते हैं गीता बाद में अहमदाबाद में एक भक्त थे हैं हमारे विचारूदास घर घर जा रहे थे गीता पाठ के लिए तो घर घर जाते जाते विश्वरूप के घर में आ गए उन दिनों में उनके पास कोई ज्ञान नहीं था गीता के बारे में इस कल और विचारूदास ने जो प्रचार करके किसी प्रकार से उनको प्रभावित किया कि गीता खरीद लेंगे पिताजी ने गीता खरीदी इनके घर में दो बेटे थे विश्वरूप उनके भाई के इनके जो पैदाइशी विमान हैं और जिनको डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और जी पाएंगे और ये उनके घर बैठे थे 15 साल पहले उन्होंने गीता ली गीता पढ़ना शुरू किया उन्हें निमंत्रण दिया मंदिर आने के लिए मंदिर आने मैंने शुरू किया और आज देखो इतने अच्छे प्रचार करने हैं और डॉक्टर ने 2 साल और दिया था जीने के 15 साल तो बीत गए थे और उनका परिचय कैसे हुआ घर घर को जा रहा था ये मैंने इसलिए एक छोटी उदाहरण दिए क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कोई गीता पढ़ेगा नहीं कोई इस पर असल पढ़ा नहीं अनेक व्यक्ति पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी ने कहा है कि आगे के 10,000 सालों के लिए एक गंतव्य व्यक्तियों की सेवा होगी तो उसके शब्द में 10,000 सालों तक लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसके पश्चात अध्ययन इतना भर जाएगा कि कोई पढ़ेगा तो हर महीने हर साल इस समय के महीने में हमारे भक्तों सारे विश्व में हमारे भक्त ग्रंथों के वेतन की सेवा करते हैं ऐसे तो सारा साल करते हैं पर गीता जयंती के उपलक्ष्य जो नया सब किया जाता है सारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक मात्रा में गीता और ग्रंथों को बांटने के लिए तो हर साल आप लोग भी भागते हो तो आप भक्तों का प्रयास रहना चाहे कि हम सारा साल बांटें है ना माया का मैराथन 1 महीने रहता है या पूरे साल
पूरे साल
माया क्या कहती है हम ही गीता जयंती अगर मैराथन करेंगे माया का मैराथन रहता है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन है ना तो इसी प्रकार भक्त का भी ये मैराथन रहना चाहिए सारा साल हमारे कई मंदिर हैं जहाँ भक्त सारा साल भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो आप भक्तों ने ये साल मैराथन के महीने में कितने की दवा दी 35,000 बुरा नहीं मानना कुछ बोलो आपके सूरज जैसे शहर के 35,000 कुछ भी नहीं बहुत कुछ भी नहीं अहमदाबाद में 1 लाख गीता की थी पर हाँ आप लोग ने फरीदाबाद का नाम सुना है कहाँ है फरीदाबाद दिल्ली के तो फरीदाबाद आपके सूरत का तो 100वां हिस्सा होगा सर अगर सूरत निकालते हो फरीदाबाद से कम 50 गुना बड़ा था फरीदाबाद ने 90,000 की करवा दी और बाकी उन्होंने मौजूदी एक एक करके क्योंकि हमारे भक्त सारे वहाँ घर घर जाकर बात रहे थे तो मैं यही उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आप एक तरह से तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने 35,000 की करवा दी तो दूसरी तरह से दूसरों की तुलना में आप काफ़ी पीछे हो तो जरा प्रयास करना चाहिए कि अगले साल हम और मेहनत करें है कि नहीं भक्ति के मार्ग में हमें एक दूसरे से प्रेरणा देते हैं और एक दूसरे की प्रेरणा से भक्ति बढ़ाते हैं जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे तो जो भक्त 11 धन इकट्ठा कर रहे थे उनका उदाहरण महाप्रभु देते थे दूसरों को जो कम धूल इकट्ठा कर रहे थे तो आप सबके वहाँ भारी हैं खास जो भक्तों के जिन्होंने ग्रंथ के बच्चों की सेवा में सहयोग देकर 35,000 गीता बांटी पिछले साल क्या था 30,000 जब प्रभुपाद जी ने नया काम शुरू किया प्रभुपाद जी ने कहा था भक्तों को डबल एक साल दुगना करो दुगना हर साल आप भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया पर मेरा यही कहना है कि आप लोग सारा साल प्रयास करो ये भाव रखने के लिए और हमारे कई शहरों में भक्त सारा साल भारत के शहरों में भी प्रयास कर रहे हैं ग्रंथों को बांटने के लिए तो आप इसे कितने भक्तों ने ग्रंथों के वेतन की सेवा में भाग लिया था तो आप उनके स्कोर पढ़ोगे हो ये कैसे बाटक कोई स्कोर पड़ेगा या क्या है हाँ पढ़िए तो उसके आधार पर फिर सर्टिफिकेट दे देते हैं हाँ आप पढ़ो